मैंने अपनी ओर से प्रार्थना की है, वे अपनी ओर से चुकने वाले नहीं हैं। सारा आत्मनिवेदन और अपनी अविकर्म विषयक अक्षमता वर्णित कर देने के बाद काव्य निंदकों पर यह चोट पेशगी में, इनहु पर करहि ते अशंका, मोहिते अधिक जेल जड़ मति रंका। अपनी कविता के भावी निंदकों पर इतना बांका प्रहार शायद ही किसी और ने किया हो। तुलसी को बहुत अधिक पीड़ा होती थी देशवासियों की दरिद्रता देखकर। उन्होंने स्वयं भी दरिद्रता झेली थी। बारे ते ललात बिलात द्वार द्वार दीन, उनके राम गरीबे निवास और दीन बंधु हैं। इस दरिद्रता को उनके राम दूर करते हैं राम राज्य की स्थापना से। आगे हम यह देखेंगे कि तुलसी ने अपने देश काल की विषमता का जो चित्रण कलयुग वर्णन के बहाने से किया है, उसमें दरिद्रता, अकाल, भुखमरी को विशेष रूप से रेखांकित किया है। इस समस्त विषमता को दूर करने वाली एक व्यवस्था का जो वे स्वप्न देखते हैं, वही राम राज्य है। जिस देश और समाज को तुलसी ने देखा था, वही उनके कलयुग एवं राम राज्य का आधार है, वही उनकी कविता का भी आधार है। तुलसी की कविता अपने देश और काल के यथार्थ पर उगी हुई कविता है। तुलसी भक्त थे। वे भक्ति के सामने कविता को कोई खास महत्व भी नहीं देते थे, लेकिन उनकी भक्ति और उस भक्ति को वहन करने वाले उनके व्यक्तित्व में वे तत्व मौजूद थे जिनके कारण वे महान कवि बन गए। इन तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था देश में प्रेम, देश से प्रेम। सच पूछिए तो तुलसी के राम, उनकी भक्ति और उनकी कविता तीनों देश प्रेम की ही भूमि पर स्थित हैं। देश प्रेम अपना स्वरूप समाज ऐतिहासिक यथार्थ से ग्रहण करता है, यथार्थ विषमता से युक्त होता है, और सच्चा देश प्रेम इस विषमता की उपेक्षा नहीं करता। जो लोग यथार्थ की विषमता नहीं देख सकते, वे यथार्थ नहीं देख सकते। यथार्थ की विषमता को देखने वाला इस विषमता की पीड़ा का भी अनुभव करेगा, और यदि वह पीड़ा का अनुभव करता है, तो उसमें इस पीड़ा से देश को उबारने की छटपटाहट भी अवश्य होगी। यही कारण है कि महान रचना में समाज ऐतिहासिक यथार्थ का चित्रण और उस यथार्थ की विषमताओं को दूर करने की प्रेरणा भी मौजूद होती है। तुलसी अपनी भाववादी द्वंद्वात्मक दृष्टि से अपने देश काल की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को देख लेते हैं। वे अपने देश की प्रकृति के सौंदर्य और कुरूपता, उसके सुखद और दुखद दोनों पक्षों को आंकते हैं। वे हमें बताते और दिखाते हैं कि जल में कमल और जोंक दोनों होते हैं। बाह्य प्रकृति की भांति मानव प्रकृति भी परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है। मानव समाज भी अच्छे बुरों, दुर्जनों सज्जनों, खलों साधुओं से युक्त है। इस घोर विषमता से पूर्ण जीवन और जगत में मनुष्य का सबसे बड़ा संबल विवेक है। तुलसीदास ने अपने समाज की विषमताओं को बेजोड़ ढंग से उजागर और चित्रित किया है। उन्होंने अपने समय के समाज में व्याप्त दरिद्रता, रोग, अंधविश्वास को स्थान स्थान पर अनेकानेक वर्णनों एवं सादृश्य विधानों के द्वारा मार्मिक ढंग से व्यंजित किया है। उन्होंने सामंती व्यवस्था की व्यवस्था रूप में आलोचना न करते हुए भी उस व्यवस्था के शोषक रूप पर तीव्र प्रहार किया है। उन्होंने कपटी कुटिल भूपों कराल दंड नीति की निंदा की है और व्यवस्था दी है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, उसे नरक में भेजो। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। उन्होंने अकाल, भुखमरी और महामारी का ही वर्णन नहीं किया, नारियों की पराधीनता को भी पहचाना। संस्कृत के विद्वान होते हुए भी जनभाषा में राम की कथा कही। वे राम कथा के पात्रों शबरी, केवट, जटायु, बंदर भालुओं को अपार सहानुभूति देते हुए भी शूद्रों की करुण स्थिति से प्रभावित पीड़ित नहीं हो पाए, यह उनकी मानवीयता और उनके देश प्रेम की बहुत बड़ी कमजोरी है। अपने समाज की विषमता को दूर करने की पीड़ा के बूते पर तुलसी राम राज्य का स्वप्न प्रस्तुत करते हैं, जो सर्व सुखद है, जहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का शमन हो जाता है, और जहाँ तुलसी की कविता, तुलसी की भक्ति और तुलसी के राम को सार्थकता प्राप्त होती है। यही सार्थकता देश प्रेम की भी है। शीर्षक, कलयुग और राम राज्य। राम की कथा लिखते समय तुलसीदास अपने युग की विषमताओं को नहीं भूलते। उन्होंने कलयुग के वर्णन के रूप में अपने युग अर्थात 16वीं 17वीं शताब्दी के भारत, विशेषतः हिंदी भाषी क्षेत्र का ही वर्णन किया है। राम की कथा का माहात्म्य बताते हुए यह बात उन्होंने बार बार कही है कि वह कलयुग के दुष्प्रभाव को दूर करने वाले हैं। अपनी रचना सुनने के लिए श्रोताओं को निमंत्रित करते समय भी तुलसीदास कहते हैं कि यह कथा बुद्ध जनों को आराम देने वाली, सभी लोगों के चित्त को प्रसन्न करने वाली है। राम की कथा कलयुग की बुराइयों को दूर करने वाली है। वह कलयुग रूपी सांप के लिए मोर के समान है और विवेक की आग को प्रज्वलित करने वाली लकड़ी के समान है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्न गभरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रारंभ और अंत तथा कवितावली में विशेष रूप से कलयुग का उल्लेख विविध प्रकार से किया है। वे सत्संग, राम नाम और राम कथा का महत्व बताते हुए प्रायः सर्वत्र कह देते हैं कि इनसे कलयुग का दुष्प्रभाव दूर होता है। तुलसी के अनुसार सत्संग तीर्थराज प्रयाग के समान है, जिसमें विधि निषेध से युक्त कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना के रूप में प्रवाहित हो रही है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, विधि निषेधमय कलिम लहरनी, कर्म कथा रविनंद निबरनी। तुलसी के अनुसार उनके रामचरितमानस की रचना भदीस अवश्य है, किंतु वह जग का मंगल करने वाली है। राम की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के पापों को दूर करने वाली है। उनकी भदेश कविता की गति टेढ़ी अवश्य है, किंतु गंगा के समान पवित्र जल वाली है। कविता बुरी हुई तो क्या हुआ, उसमें राम का गुणगान तो किया गया है। काली गाय का दूध खास तौर पर लाभकारी होता है। उसी तरह गांवों की भाषा में लिखी गई राम की कथा भी ज्यादा गुणकारी होगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकुर कविता सरित की, ज्यो सरित पावन पाथ की। श्याम सूर भी पय बिसद अति गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सियराज सियराम जस गावहि सुनहि सुजान। कलिकाल में कुपंथ, कुतर्क, कपट, कुचाल, दंभ और पाखंड बहुत है। राम के गुण उन बुराइयों को जलाने के लिए प्रचंड ईंधन और आग के समान हैं। कुपथ कुतरक कुचाल कली कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। यह राम कथा मानसरोवर से प्रवाहित होने वाली वह वेगवती नदी है, जो कलयुग के घास पात और वृक्षों को समूल उखाड़कर बहा ले जाती है। नदी पुनीत सुमान संदनी है। कलिमल त्रिन तरु मूल निकंदिनी, राम कथा की इस नदी का जल रामचंद्र के प्रति प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे उत्पन्न ग्लानि को दूर कर देता है। संसार के श्रम को सूख कर संतोष प्रदान करता है। वह कलयुग के दुखों, दोषों और दरिद्रता को दूर करने वाला है। राम सुपे मही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। कलयुग हिंदू पुराणों में अपनी बुराइयों के लिए बहुत बदनाम है। वह पाप युग का प्रतीक बनकर लगभग एक अवधारणा बन गया है। लेकिन तुलसीदास जब कलयुग का उल्लेख करते हैं तब वे पौराणिक कलयुग का उल्लेख नहीं करते, बल्कि अपनी आंखों देखे उस समाज का वर्णन करते हैं जो अनेक प्रकार के पाप, ताप दोष और दरिद्रता से पीड़ित है। तुलसी सामंती व्यवस्था के पोषक हैं या नहीं, नारी निंदक हैं या नहीं, यह सब विवादास्पद हो सकता है। जो बात निर्विवाद है वह यह कि तुलसी मानवीय करुणा के अन्यतम कवि हैं, और कवि होने का अर्थ यह है कि वे जो कुछ देखते हैं उसका शब्दों के माध्यम से मार्मिक चित्रण कर सकते हैं। ऐसा चित्रण जो विवेक और लोक मंगल की भावना से प्रेरित है। कलयुग का उल्लेख मात्र कर देने से तुलसी के समाज का मार्मिक चित्र नहीं प्रस्तुत होता, बुराइयों की तालिका प्रस्तुत कर देने से भी बात नहीं बन सकती थी। तुलसी कलयुग के नाम पर अपने समाज का जो वर्णन करते हैं वह विशिष्ट दृश्यों और घटनाओं से युक्त है, इसलिए वह पाठक के लिए दृश्य और चित्र बन जाता है। कलयुग का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस और कवितावली में विशेष रूप से किया है। तुलसी के अनुसार कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण है कपट और मिथ्या आचरण। सब लोग स्वच्छंद आचरण करते हैं, जो ज्यादा गाल बजाता है वही पंडित माना जाता है, जो मिथ्या दंभ में रत है वही संत कहलाता है। दूसरे का धन हर लेने वाला, झूठ बोलने वाला और मस्खरी करने वाला गुणवान माना जाता है। आचरणहीन ज्ञानी विरागी कहलाते हैं, लंबे लंबे नाखूनों और जटा वाले तापस रूप में प्रसिद्ध हैं। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहई सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सुख बड़ अचारी, जो कह झूठ मसखर जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सुबिरागी, जाके नख अरु जटा बिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। तुलसीदास अपने समाज की बुराइयां कथनी और करनी के अंतर के आधार पर कहते हैं, गुरु ऐसे हैं जो शिष्य का धन हरण करते हैं। शिक्षा संस्कार के लिए नहीं बल्कि पेट भरने के लिए सीखे जाते हैं। नारी नर ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर और कोई बात नहीं करते, लेकिन लालची इतने हैं कि एक कौड़ी के लिए ब्राह्मण और गुरु को मार डालते हैं। हरई शिष्य धन सो कन कर हरई, सो गुर घोर नरक महु परई, मातु पिता बाल कन्ह बोलावहीं, उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहई न दूसरी बात, कौड़ी लागी मुह बस करहीं विप्र गुर घात। कलयुग की बुराइयों का दूसरा कारण तुलसीदास के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था का परित्याग है। इस विषय में तुलसीदास कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिन्हें हम आज स्वीकार नहीं कर सकते। निसंदेह तुलसीदास वर्ण व्यवस्था को एक जीवन और सामाजिक मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वे किसी शूद्र की निंदा इस आधार पर नहीं करते कि वह शूद्र है, बल्कि इसलिए कि उसने अपना कर्म छोड़ रखा है। अपना कर्म छोड़ने वाला समान रूप से निंदनीय है, चाहे वह शूद्र हो चाहे ब्राह्मण। शूद्र यदि इसलिए निंदनीय है कि वे स्त्री के मर जाने पर और संपत्ति नष्ट हो जाने पर मुड़ मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं, कुदाल छोड़कर जनेऊ पहन लेते हैं, तो ब्राह्मण इसलिए निंदनीय है कि वे अपढ़, लोभी, कामी, दुराचारी, दुष्ट और अन्य जाति की स्त्रियों से अनुचित संबंध रखते हैं। शूद्र द्विजन्न उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही कुदाना। बादहि शूद्र द्वि जन हसन हम तुम ते कछु घाटि जानहि ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावहि डांडी विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ वृषल स्वामी। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सन्यासी धनी हैं और गृहस्थ दरिद्र, राजा पापी हो गए हैं, वे प्रजा को दंडित करते हैं और नित्य ही उसकी दुर्दशा करते हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही निरप पाप परायन धर्म नहीं कर दंड विडम्ब प्रजा नितहि। सच्चे कवियों के लिए दुनिया में उदार आश्रय दाताओं का टोटा पड़ गया है, दोष निकालने वाले बहुत हैं, गुनी कोई नहीं। कलयुग का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह की बार बार अकाल पड़ता है, लोग अन्न के बिना दुखी होकर मर रहे हैं, लोग धर्म कर्म यज्ञ आदि तामस भाव से करते हैं, दैव जल नहीं बरसाते, बीज बोने से धरती पर धान नहीं जमता, लोग धनहीन और दुखी हैं, लोग पीड़ित हैं, वे भोग भी नहीं कर सकते, लोगों की आयु क्षीण हो गई है, कलिकाल ने मनुष्यों को बेहाल कर दिया है, अच्छी और बुरी सभी जातियों के लोग भिखारी हो गए हैं। कलि बारही बार दुकाल परै बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन संवत पंच दशा कल पातन नास गुमानु असा कल काल बिहाल किए मनोजा नहीं मानत को अनुज तनुजा नहीं दोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मंगता। अपनी आँखों से देखे कलयुग अर्थात अपने समाज का वर्णन तुलसीदास ने कवितावली में और जमकर किया है। कवितावली में कलयुग वर्णन नाम से जो अंश है वह तो है ही, अकाल वर्णन महामारी वर्णन भी है। इस सबसे तुलसी के समकालीन समाज की आर्थिक विषमता और दुरावस्था पर प्रकाश पड़ता है। रामचरितमानस में कलयुग वर्णन पौराणिक पद्धति पर कथा के रूप में एक पात्र से करवाया गया है, किंतु कवितावली में तो तुलसीदास ने खुले तौर पर अपने समाज की विषमता का चित्रण किया है। रामचरितमानस में सामाजिक आचार भ्रष्टता और वर्णाश्रम व्यवस्था के शिथिल हो जाने का अधिक रोना रोया गया है, जबकि कवितावली में दरिद्रता और अकाल का चित्रण अधिक है। कवितावली के वर्णन अपेक्षाकृत अधिक यथार्थपरक वास्तविक और मार्मिक हैं। कलिकाल में दरिद्रता दुर्भिक्ष दुख दुर्वृत्ति और कुशासन दिनों दिन दूने होते जा रहे हैं, सुख और अच्छे कार्य घटते जा रहे हैं। दिन दिन दुनो देखी दरिदु दुकाल दुखु दुरितु दुराज सुख सुकृत सकोच है। वेद पुराण का मार्ग खत्म हो गया, कुमार्ग चल निकला, समय कराल है, राजा कृपालु नहीं है, राज समाज तो बड़ा ही छली है, वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, दुनिया दुख दोष और दरिद्रता से पीड़ित है। वेद पुराण बिहाय सुपंथु कुमार्ग कोटि कुचाल चली है, कालु कराल नृपाल कृपाल न राज समाज बड़ोई छली है, वर्ण विभाग न आश्रम धर्म दुनि दुख दोष दरिद्र दली है। किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, वणिक का व्यापार बंद है, चाकर को चाकरी नहीं मिलती, जीविका विहीन होकर दुखी लोग इधर उधर घूमते हुए एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाए क्या करे। वेद पुराण कहते हैं और लोक में भी यही देखा गया है कि संकट के समय राम ही कृपा करते हैं, दीन बंधु राम। दुनिया को दरिद्रता रूपी रावण ने दबोच लिया है, उसके अत्याचार की यह ज्वाला देखकर तुलसीदास हाहाकार करते हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एका एक कनसौ कहाँ जाय का करी। दारिद दसानन दबाए दुनि दीन बंधु दुरित दहन देख तुलसी हहा करी। दरिद्रता रावण है जिसे मारने की प्रार्थना तुलसी राम से कर रहे हैं। श्रमिक, किसान, वणिक, भिखारी, भाट, चाकर, फुर्तूले नट, चोर, दूत, जादूगर, सभी लोग पेट के लिए ही पढ़ते, विद्या सीखते, पहाड़ पर चढ़ते हैं, घनघोर जंगलों में मारे मारे फिरते हैं, शिकार करते हैं, लोग ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करते हैं, यहाँ तक कि बेटा बेटी भी बेच देते हैं पेट के लिए। यह पेट की आग बड़वाग्नि से भी अधिक भयंकर है, उसे केवल राम रूपी घनश्याम बरसने वाला बादल ही बुझा सकते हैं। किस भी किसान कुल, बनिक, भिखारी, भाट, चाकर, चपलनट, चोर, चार, चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बड़वाग ते बड़ी है आग पेट की। यहाँ राम पेट की आग को शांत करने वाले बादल हैं, लेकिन तुलसी ने अपनी आंखों से जिस समाज को देखा है उसकी विषमता का वर्णन केवल कली काल के अंतर्गत ही नहीं किया है, उन्होंने अपने समय की स्थिति का वर्णन उन्होंने अपने समय की स्थिति का बयान और भी प्रसंगों में व्यंजित किया है। दरिद्रता और दुर्भिक्ष का वर्णन उन्होंने कलिकाल और अकाल के वर्णन में ही नहीं किया है। अन्नपूर्णा देवी की स्तुति जिस ढंग से उन्होंने की है उसमें अन्नपूर्णा का महात्म्य व्यंजित होता है, भुखमरी के यथार्थ और सजीव चित्रण से। जब तक अन्नपूर्णा भवानी द्रवित होकर कृपालु नहीं होती तब तक लालची ललाते रहते हैं, दीन दरवाजे दरवाजे बिलबिलाते रहते हैं, बिलबिलाते बिल लाते घूमते हैं। प्लीज रिपीट, दीन दरवाजे दरवाजे बिल लाते घूमते हैं, उनका मुख मलिन रहता है, मन में चिंता बनी रहती है, वे श्राद्ध विवाह या किसी उत्सव समारोह की बाट जोहते रहते हैं, इधर उधर डोलते फिरते हैं, ढोल और तुरही की आवाज सुनकर लोगों से पूछते हैं कि यह क्यों बज रहा है। प्यासे को पानी तक नहीं मिलता, भूखे को चार चने तक नहीं मिलते, लोग चाहते हैं कि आहार का पर्वत ही मिल जाए तो खा लें, किंतु घूरे पर पड़ी हुई दाल भी उन्हें नसीब नहीं होती। लालची ललात बिललात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटैन बिसूरना, ताकत सराध कै विवाह कै उछाह कछु, डोलय लोल बूझत सबद ढोल तुरना, प्यासे हूँ न पावै बारी भूखे न चनक चारी, चाहत आहार न पहार दारी घूरना, सुख को अगार दुख भार भरो तौलो जन जौलो, द्रवय न भवानी अन्नपूर्णा। तुलसीदास के काशी निवास के दौरान काशी में भयंकर महामारी पड़ी थी। तुलसीदास ने उसे कलिकाल का प्रभाव बताते हुए उसका बयान किया है। गौरीनाथ, भोलानाथ और भवानीनाथ, आपकी पुरी में कलिकाल की दुहाई फिर गई है। वेदों तक ने कह दिया कि आपकी कृपा से काशी के पुरुष शंकर समान और स्त्रियां पार्वती के समान हैं। इस नगर के लोग तो आपको अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के समान प्यारे हैं, फिर भी वे व्याकुल और बेहाल हैं। नगर रूपी लता को कलयुग रूपी किरात काट रहा है, आप अपने माथे का तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दीजिए। गौरीनाथ, भोरानाथ, भवत भवानी नाथ, विश्वनाथपुर फिरी आन कलिकाल की, शंकर सेनर गिरजासी नारिकासी बासी, वेद कही सही सही शीश शेखर कृपाल की, छमुख गणेश ते महेश के प्यारे लोग, बिकल बिलोकियत नगर बिहाल की। पुरी सुर बेल केली काटत की रात कली, निठुर निहार ये उधार दिठि बहाल भाल की। शंकर के अलावा ये वे हनुमान से महामारी दूर करने की प्रार्थना करते हैं। काशी में महामारी के साथ दरिद्रता भी है। लोग दरिद्र भूखी नहीं सॉरी लोग दरिद्र दुखी भिखारी और भीरू हो गए हैं। कलयुग यहीं तक सीमित नहीं है। तुलसीदास ने जो वर्णाश्रमी परंपरा प्राप्त की थी उसके कारण एक और तरह का कलयुग वे स्वयं झेलते हैं, उससे पीड़ित होते हैं, उसका वर्णन भी खूब करते हैं, लेकिन उसे कलयुग कह नहीं पाते। तुलसीदास को जिस वर्णाश्रम व्यवस्था ने पीड़ित किया था उसका वे समर्थन करते हैं। तुलसी को गरीबी, अकाल, महामारी, बाहु पीड़ा ने भी नहीं पीड़ित नहीं किया था, काशी के कट्टर पंडितों और ब्राह्मण व्यवस्था ने भी पीड़ित किया था, किंतु वे इस पीड़न को कलयुग का दुष्प्रभाव नहीं कहते, उल्टे उस व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करने के लिए उन्हें कबीरदास की भांति जुलाहे के घर में पैदा होना पड़ता, लेकिन तुलसीदास का पाठक इस बात को लक्षित किए बगैर नहीं रह सकता कि सिद्धांतः वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करने वाले तुलसी कई ऐसी पंक्तियां भी लिख गए हैं जिनमें वर्ण व्यवस्था के प्रति कबीर दास जैसा आक्रोशपूर्ण विरोध है। व्यक्तिगत स्तर पर तुलसीदास वर्ण व्यवस्था की कट्टरता के शिकार हुए थे। वे अब्दुल रहीम खानखाना और नाभा दास की ही अभिन्न मित्र नहीं थे, दर्जनों अवर्ण व्यक्ति उनके अंतरंग थे। उनके व्यक्तित्व के इस उदास पक्ष पर उसी वर्ण व्यवस्था ने तीव्र और मर्मांतक प्रहार किए थे जिसका कि तुलसी समर्थन करते हैं। लोक और वेद दोनों में तालमेल बिठाने के चक्कर में तुलसी इस विडंबना को ठीक ठीक नहीं पहचान सके। वैसे जात पात ऊंच नीच की धारणा ने उनके साथ कैसा सलूक किया था यह उनकी कविता में एकाद स्थल पर नहीं अनेकानेक स्थलों पर देखने को मिलता है। मुझे धूर्त कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो या जुलाहा कहो, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी करके उसकी जाति नहीं बिगाड़नी है। तुलसी राम का सरनाम गुलाम है, जिसकी जो इच्छा हो कहे, मैं मांग के खाना खा लूंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा, मुझे एक लेना नहीं है, किसी को दो देना नहीं है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, कहू काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सौ कहे कछु औ, मांग के खैबो मसीत को सोईबो, लैबो एक न दैबे को दो। मेरी कोई जात पात नहीं है, मैं किसी के जात पात नहीं जानना चाहता, मेरे कोई काम का नहीं है, मैं भी किसी के काम का नहीं हूं, मेरा लोक परलोक सब रघुनाथ के हाथ है। तुलसी को उनके नाम का ही भारी भरोसा है। मेरी जाति पूछने वाले लोग कितने अनजान हैं, वे यह उक्ति भी नहीं समझ पाते कि मालिक की जाति ही गुलाम की भी जाति होती है। मैं साधु हूँ, असाधु हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं जो कुछ हूँ राम का हूँ, क्या मैं किसी के दरवाजे पर पड़ा हूँ? मेरे जाति पाति न चाहो काहू के जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को। लोक पर लोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के ना एक नाम को। अति ही अयान उपी खानो नहीं बुझे लोग, साहि को गोत गोतु होत है गुलाम को। साधु कै असाधु कै भलो कै पोच सोचु कहा का काहू के द्वार परौं जो हौ सो हौ राम को। अकेलेपन की भावना एक प्रकार के निर्वासन की भावना है। हमारे देश में सवर्ण लोग उस आदमी का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं जो अपने वर्ण के आचार नियमों को तोड़ देता है या जिसका वंश या व्यवहार वर्ण विशेष के संकीर्ण एवं कठोर नियमों के जरा भी प्रतिकूल नहीं होता। तुलसी के विषय में जो प्रामाणिक अर्ध प्रामाणिक किंवदंतियां और आलेख मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है कि वे कई मुस्लिम और अवर्ण व्यक्तियों के अभिन्न मित्र थे। उनकी मित्र मंडली में पासी, चमार, अहीर, धाड़ी, जुलाहा, केवट सभी जातियों के लोग थे। कहा जाता है कि उन्होंने काशी में जो रामलीला शुरू कराई थी उसमें राम कथा के शबरी, केवट जैसे अवर्ण पात्रों का अभिनय उसी जाति के लोग करते थे। अवर्ण जाति के लोगों से तुलसी की इतनी अभिन्नता के कारण काशी के कट्टर ब्राह्मणों और पंडितों में कैसा प्रवाद फैला होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। तुलसी के जन्म और माता पिता विषयक प्रवाद ने भी इस प्रवाद को बहुत तीव्र और क्लेशकर बना दिया होगा। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, मेरे को काम को नहाओ काहू के काम को, साह ही को गोतु गोतु होत है गुलाम को। जैसे टुकड़े उसी अकेलेपन और अमर्ष को व्यंजित करते हैं। तुलसी के विषय में नाना प्रकार के प्रवाद उठे थे, इसका संकेत और भी कई स्थानों पर मिलता है। इसलिए धूत अवधूत रजपुत जुलाहा वाली बात केवल विनम्रता सूचक या मुहावरे का इस्तेमाल नहीं है। कोई कहता है कि तुलसी छली कपटी है, बड़ा दगाबाज है। कोई कहता है राम का खरा गुलाम है, साधु उसे महासाधु समझते हैं और दुष्ट बहुत दुष्ट समझते हैं। उसके विषय में तरह तरह की झूठी सच्ची बातों के बुलबुले उठते रहते हैं। वह किसी से कुछ नहीं चाहता, किसी की करनी कुछ नहीं कहता, सबकी सहता है, मन में उबता नहीं है। तुलसी का भला बुरा रघुनाथ के ही हाथ है। राम की भक्ति रूपी भूमि पर तुलसी की मति रूप दूब उगती है। कोऊ कहे करत कुसाज दगाबाज बड़ो, कोऊ कहे राम को गुलाम खरो खूब है। साधु जाने महासाधु, खल जाने महाखल, बानी झूठी सांची कोटि उठती हबूब है। चहत न काहू सौ न कहत काहू की कछु, सबकी सहत उर अंतर न ऊब है। तुलसी को भलो पोच हाथ रघुनाथ ही के, राम की भक्ति भूमि मेरी मति दूब है। जब तुलसी लिखते हैं उर अंतर न ऊब है, तब यही प्रकट होता है कि वे कभी कभार जरूर उबते रहे होंगे और उस ऊब से पराजित न होने के लिए संघर्ष भी करते रहे होंगे। उनकी कुछ पंक्तियों से लगता है कि शायद वे कभी अकेलेपन, ऊब और निष्फलता की भावना से कुछ देर के लिए हार भी जाते थे। ऐसा न होता तो वे ऐसी पंक्तियां न लिखते। कियो न कछु करिबू न कछु मरी बोई रहयो है, जीवे किन लालसा दयाल महादेव मोहि, मालूम है तेही मरिबेई को रहतु हौ। दीबे जोग तुलसी न लेत काहू को कछुक, लिखी न भलाई भाल पोच न करत हौ। तुलसीदास की इस खिन्नता, उदासीनता और क्षणिक मरणेक्षा से उन लोगों का गहरा संबंध होगा जो तुलसीदास को धूत अवधूत रजपुत जुलाहा दगाबाज कहते थे और जिनकी विशद वंदना तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रारंभ में की है। मिलने मात्र से दारुण दुख देने वाले, ओले के समान स्वयं नष्ट होकर भी फसल चौपट कर देने वाले, उजड़ने पर हर्ष और बसने पर विषाद अनुभव करने वाले, अघ अवगुण धन धनि धनेश, धिग धर्म ध्वज धंधक धोरी, सिय निंदक अध ओध कुतर्की, वज्र के समान वचन बोलने वाले खल भी कलयुग वर्णन के अंतर्गत माने जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त तुलसी ने राम कथा के सभी पात्रों को कलयुग के यानी अपने समाज और समाज का बना दिया है, जो उन जैसे लोकवादी महाकवि द्वारा ही संभव था। कलयुग अर्थात तुलसी के समसामयिक समाज में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं थे, अच्छे लोग भी थे। अगर न होते तो सत्संग की इतनी महिमा कैसे होती। गुण दोषमय विश्व तुलसी के कलयुग में भी था। तुलसी के रावण केकई मंथरा ही उनके समाज के नहीं हैं। राम भरत हनुमान शबरी और केवट भी उसी कलयुग के हैं जिसका वर्णन उन्होंने किया है। तुलसीदास के समसामयिक समाज में सिर्फ कलयुग ही नहीं था, राम राज्य की स्थापना करने वाले तत्व भी थे। इन तत्वों ने मिलकर तुलसी की रचनाओं को बहुत गहरे जाकर रचनात्मक स्तर पर भी प्रभावित किया है। इस प्रभाव को रचनात्मकता से जोड़े बिना तुलसी महाकवि इतने महान महाकवि नहीं बन सकते थे। जो लोग रावण को तत्कालीन मुस्लिम सम्राट का प्रतिनिधि बनाने जैसी गलत और ओछी बातें कहते हैं, उन्होंने तुलसीदास को समझने की कौन कहे पढ़ा भी नहीं है। तुलसी ने एकाध स्थल पर बताया है कि रावण और निशिचर कौन है। आप देख चुके हैं कि एक जगह तुलसी ने दरिद्रता को रावण कहा है, ऐसा रावण जिसने दुनिया को दबोच रखा है। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। लंका के राक्षसों का वर्णन करते समय तुलसी ने लिखा कि वहां दुष्ट चोर जुआरी लंपट दूसरे का धन दूसरे की स्त्री छीन लेने वाले माता पिता को देवता न मानने वाले सज्जनों से अपनी ही सेवा करने वाले बहुत बढ़ गए। इसके फौरन बाद उन्होंने जोड़ा, जिन्ह के यह आचरण भवानी ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। हनुमान बाहुक में बाहु पीड़ा को राहु की माता सिंहिका राक्षसी केसरी किशोर रनरोर बरजोर बीर बाहु पीर राहु मातु ज्यो पछारी मारिये। मकरी राक्षसी पोखरी विशाल बाहु बलि बारि चरि पीर मकरी ज्यो पकरी कै बदन बिदारिये। लंकिनी राक्षसी महाबीर बांकुरे बरा की बाह पीर क्यों न लंकिनी ज्यो लात धात ही मरोरी मारिये। पूतना पिसाचिनी ज्यो कपिकान तुलसी की बाह पीर महाबीर तेरे मारे मारेगी मरेगी कहा गया है। उन्होंने कुरोग को निर्दय राक्षस कहा है। खाए हुते तुलसी कुरोग राढ़ राक्षसनी केसरी किशोर राखे बीर बरी याई है। दरिद्रता दीनता रोग जाति पाति की विषमता आदि ने तुलसीदास को व्यक्तिगत रूप से पीड़ित किया था। यही वे तत्व हैं जो कलयुग के प्रधान दुर्गुण हैं। यही तुलसीदास के समसामयिक समाज के प्रधान दोष हैं। वर्ण व्यवस्था का यद्यपि तुलसीदास समर्थन करते हैं, किंतु यही व्यवस्था तुलसीदास को पीड़ित करती है। इस अंतर विरोध में तुलसीदास का कृतित्व बुरी तरह ग्रस्त है। वे डंके की चोट पर ब्राह्मण को पूज्य प्रणम्य महिसूर घोषित करते हैं, किंतु परशुराम नारद रावण आदि ब्राह्मणों को हास्यास्पद एवं मोहग्रस्त रूप में चित्रित करते हैं। जो सकल गुणहीन होने पर भी पूज्य हैं, वही द्विज देवता धरही के बाढ़े कब हुन परे सुपट रन गाढ़े भी हैं। जो शूद्र परम प्रवीण होने पर भी अपूज्य हैं, वही निषाद कोल किरात राम को भरत के समान प्रिय हैं। तुलसीदास का व्यक्तित्व सबसे अधिक दुखी और त्रस्त दरिद्रता से है। दरिद्रता और रोग तुलसी की रचनाओं में सिर्फ ऊपरी स्तर पर नहीं आए हैं। राम का जो गुणगान तुलसी ने किया है, राम कथा का जो वर्णन किया है, उसमें दरिद्रता और भूख उनकी रचनात्मकता का अभिन्न अंग बनकर आए हैं। मार्मिक से मार्मिक प्रसंगों में तुलसी को निर्धनता विस्मृत नहीं होती। राम कथा के परंपरा प्राप्त रूप को अत्यंत मार्मिक बनाते समय तुलसी अनेकानेक स्थानों पर रंक, दरिद्र, गरीब, भूख आदि की सहायता से अपने जिस अत्यंत प्रभावशाली काव्य संसार का सृजन करते हैं, वह उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझने की दृष्टि से उपेक्षणीय नहीं है। राम कथा पर आधारित काव्यों की कमी नहीं है, किंतु तुलसी की अपनी विशेषता और उनकी महान लोकप्रियता का कारण तुलसी की वह भावनात्मक दृष्टि है जिससे उन्होंने राम कथा को उपस्थित किया और जो स्वयं तुलसी के व्यक्तित्व और तुलसी के समाज की विषमताओं पर आधारित है। तुलसी ने केवल ऐसी ही पंक्तियां नहीं लिखी, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तुलसीदास बात कर रहे हैं मोह को दूर करने की, लोभ को जीत लेने की, लेकिन मोह को मोह न कहकर मोह रूपी दरिद्र कहते हैं। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ वात नहीं ताहि बुझावा। रामचरितमानस में केवट और राम का जो प्रसंग चित्रित किया है वह मध्यकालीन साहित्य में अद्वितीय है। केवट प्रेम विभोर है, देवता फूल बरसाते हैं और उसके भाग्य से ईर्ष्या करते हैं। हो गया। केवट अपने परम सौभाग्य को प्रकट करता हुआ कहता था, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं किन्नी मजूरी, आज दिन विधि बनी भल भूरी। राम के दर्शन करने से, उनके चरण धोने से केवट को मानो दारिद्र मिट गया, उसे पुरानी सारी मजूरी मिल गई। तीर्थराज के दर्शन करने से जो पुण्य होता है उसका वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं, चवर जमुना और गंग तरंगा, देख हो ही दुख दारिद भंगा। रामचरितमानस में एक ऐसा प्रसंग है जिसके विषय में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि वहां तुलसी ने तापस वेश में स्वयं राम के दर्शन करने का वर्णन किया है। प्रयाग से चित्रकूट जाते समय रास्ते में राम लक्ष्मण सीता को एक तापस मिलता है जो तेज का पुंज, अल्प वय का और सुंदर था। वह कवि था, उसकी गति अलिखित थी या कवि ने उसकी गति लिखी नहीं। वह मन कर्म और वचन से राम का अनुगामी था। वह तापस कवि कथा में सहसा बिना किसी भूमिका से के आता है और फिर कभी नहीं दिखलाई पड़ता। शुक्ल जी का अनुमान है कि राजा पुरयानी अपनी जन्मभूमि के निकट पहुंचने पर राम लक्ष्मण और सीता का स्वागत स्वयं तुलसी ने तापस कवि के रूप में किया है, जो प्रसंग मार्मिक है और शुक्ल जी का अनुमान ठीक माने तो परम आत्मीय है। यहाँ राम से मिलने पर तापस को जो परम सुख होता है उसमें रंक विद्यमान है। सजल नयन तन पुल की निज इष्ट देव पहचानी, परेउ दंड जिम धरन नितल दसान जाय बखानी। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंकु जनु पार सुपावा। प्रिय जनों का समागम पूरा हो, भरत और हनुमान तो वहाँ कथा क्रम के कारण उपस्थित नहीं हो सकते थे। निषाद राज उपस्थित हो सकते थे वे हैं, और तुलसी राम के सौंदर्य का पान करके पुलकित हैं, इतना पुलकित हैं जितना भूखा भोजन पाकर होता है। पियत नयन पुट रूपी पीयूषा, रिपीट, पियत नयन पुट रूपु पीयूषा, मोदित सुअस नुपाई जिमि भूखा। तुलसीदास के राम प्रेम के आदर्श भरत हैं, भरत का भाईप तुलसी के अगाध स्नेही हृदय में डूबकर ही इतना निर्मल और कांतिमान बन सकता था। तुलसी के सबसे परम आत्मीय पात्र भरत हैं। उन्होंने राम से मिलने के लिए जाते हुए दूर से चित्रकूट स्थित राम के आश्रम के वन पर्वत समूह को देखा तो उन्हें इतना आनंद हुआ जितना आनंद भूखे व्यक्ति को सुअन्न भोजन पाकर होता है। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीख बन सैल समाजु, मुदित छुदित जनु पाई सुनाजु। इसी प्रकार बरनी न जाय दसा तिन्ह केगरी, लही जनु रंकन सुरमनि ढेरी। भई मुदित सम ग्राम बधूटी, रन कन राय रास जन लूटी। कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लूटन सोना। तात गलान करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। आदि। तुलसी की रचनाएं इस प्रकार के उदाहरणों से परिपूर्ण हैं। इन सबको इकट्ठा करें तो एक पुस्तक बन जाएगी। पुस्तक बहुत पतली नहीं होगी। सुख पुलक ब्रह्मानंद से बढ़कर राम के दर्शन, उनसे आलिंगित होने का सुख, यह सब वर्णित और चित्रित करते समय तुलसी दरिद्रता और भूख को नहीं भूलते। नहीं भूलते लिखना कितना अपर्याप्त है। यदि तुलसी भूख और दरिद्रता का अनुभव इतने गंभीर और तीव्रतम रूप में न करते होते, यदि वे अपनी समसामयिक निरन्न और निर्वस्त्र जनता की, जिसमें वे स्वयं भी बड़े थे, बड़वाग्नि से भी भयंकर दुखदायिनी पिटागी की ज्वाला का अनुभव न करते और उसे दूर करने की गहरी छटपटाहट उसमें न होती, तो वे राम से भेंटने के आनंद की तुलना अन्न भोजन से न करते। राम के सामने जाकर तुलसी के गरीब पात्र सिर्फ पुलकित ही नहीं होते, वे अपनी भौतिक स्थिति का भी बयान करते हैं। केवट राम से कहता है, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु बेद न पढ़ाई हो। पत्तल भरी मछली मेरे सभी छोटे छोटे बच्चे खाते हैं। नाव को छोड़कर मेरी और कोई जीविका नहीं है। मैं ब्राह्मण नहीं हूं जो मेरे बच्चे वेद पढ़ेंगे। चित्रकूट के कोल किरात राम से कहते हैं, हम तो रात दिन पाप करते हैं, फिर भी हमारी कमर में लंगोटी नहीं और कभी हमें भरपेट भोजन नहीं मिलता। पाप करत निसिबास न जाही, नहीं पट कटे नहीं पिट अघाही।